वृद्ध गणपति महासेनापति मिथुदस परिस्थितियों की गुरुता अनुभव कर केंद्रस के आक्रमण का प्रतिशोध करने के लिए बद्ध परिकर हुए। गणकोष और रण सामग्री के आयोजन की व्यवस्था का कार्य उन्होंने महाश्रेष्ठ प्रेस्त को सौंपा और सैन्य संधान की आयोजन महासामंत यवन उक्रोश को। नवशिक्षित सैन्य लेकर तविसा तटवर्ती दुरूह पर्वत उपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने के लिए उन्होंने पृथ्वीसेन को नियुक्त किया और स्वयं प्रत्येक कार्य का ब्यौरा से निरीक्षण और निर्देशन करने लगे। नगर और प्रदेश की आंतरिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व उन्होंने महापंडित धर्मस्थ को सौंपा। नई व्यवस्था से जन समाज का निरुत्साह और त्यास शीघ्र ही दूर हो गया और संग्राम का उत्साह उमड़ आया। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित सैन्य दल स्वेच्छा से उमड़े चले आ रहे थे। शस्त्रों का निर्माण चतुर्गुण मात्रा में होने लगा। गणपति के वार्धक्य से स्थिल जर्जर शरीर असम पथों पर वेगवान रथ के झकोले सहने में असमर्थ था। वे प्रातः मध्यान्ह संध्या किसी भी समय शिव का रूढ़ होकर निरीक्षण कार्य करते हुए नगर और उपांत के किसी भी भाग में दिखाई दे जाते। पृथ्वीसेन अपने चपल श्वेत अश्व की ग्रीवा वाकुरा से दोहरी किए प्राय उनके पार्श्व में दिखाई देता अथवा वह अश्वरोहियों के दल के साथ व्यग्रता से पथों और वीथियों में वाण के समान द्रुत गति से निकल जाता। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी अश्वरोही और पदाति सेनाओं की व्यूह रचना और आक्रमण की शिक्षा देने में व्यस्त रहता। उन्होंने जंगल युद्ध का अभ्यास कराने के लिए वह तीन तीन दिन और रात जंगलों तथा अपागा नदी के कछारों में पड़ा रहता। तात धर्मत्स आचार्य प्रबुद्ध शर्मा धिति शर्मा से आदर पाकर भी पृथ्वीसेन पंडित विष्णु शर्मा विनय शर्मा आदि की मौन विरोध भावना के कारण समय मिलने पर भी धर्मत्स के प्रसाद में न आता। पिता की अनुमति से उसने तात धर्मत्स के सम्मुख उनकी पपोत्री के पाणी के लिए इच्छा मांगी। तात ने उत्तर दिया, वत्स इस समय तुम एक महान कार्य का उत्तरदायित्व लिए हो, संपूर्ण मनोयोग से उसी में ध्यान दो। पुत्र, सभी प्रसंगों के लिए काल के अनुसार अवसर होता है। चिंता रूपी कलिका पल्लवों से अवरुद्ध दिव्या के हृदय का पुष्प अभी अपने पटलों को प्रस्फुट नहीं कर पाया था। वह दूसरी चिंता के आतप से कुमलाने लगा। पृथ्वीसेन की प्रतीक्षा में उसे तीन चार दिन बीत जाते और वह उसे एक पलक भी न देख पाती। पृथ्वीसेन की खोज में वह मल्लिका और वसुमित्रा के प्रसादों के चक्कर लगाती, परंतु वह दिखाई न पड़ता। अधीर होकर वह प्रेस्त के प्रसाद में पहुंची। पृथ्वीसेन की माता और श्रेष्ठि ने उसका सिर गूंथ कर वात्सल्य से अंक में लेकर स्वागत किया, परंतु पृथ्वीसेन न मिला। ओठों पर मुस्कान और हृदय में पीड़ा लेकर वह लौट आई और निराश होकर एकांत में पड़ी रही। अपने शैथिल्य और विरक्त के लिए महादेवी से प्रताड़ना और उपालभ्य सुनकर भी वह विवश थी। उत्तर में वह केवल अश्रु बहा सकती थी। पृथ्वीसेन कभी कार्यभार से अवसर पा जाने पर वृद्धा दासी वापा द्वारा धर्मत्स के प्रसाद में दिव्या को संदेश भेज देता। वे मल्लिका या वासुमित्र के प्रसाद में, पुष्यकारिणी के उपवन में अथवा प्रस्थ प्रसाद में कुछ समय के लिए एकांत में मिल पाते। दिव्या उद्रेक के अतिरिक्त से पृथ्वीसेन के वक्ष में समा जाना चाहती। उसके नेत्रों में असुधार बहने लगती। उसे अंक में लेकर संतावना देने के प्रयत्न से पृथ्वीसेन स्वयं विह्वल होकर दिव्या में आश्रय ढूंढने लगता। दिव्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वर्जने के लिए बाध्य हो जाती। पृथ्वीसेन निढाल और निराश हो जाता। उसकी वह मुद्रा दिव्या के लिए मारमर्तक पीड़ा का कारण बन जाती। पृथ्वीसेन ने संयम की मुद्रा में दोनों बाहु वक्षस्थल पर बांधे, परंतु अति विह्वल स्वर में कहा, शीघ्र ही मैं तविसा तट पर युद्ध में जा रहा हूँ। यदि तुमने मुझे अंगीकार किया तो मेरी स्मृति में तुम्हारी वर्जना ही साथ जाएंगी। यदि न लौटा संभवतः मेरा सो ही सागल आएगा। दिव्या उसके ओंठों पर हाथ रख फूट फूट कर रो पड़ी। संयम की यंत्रणा से आकुलाकर पृथ्वीसेन ने आत्मकरुणा की व्यथा में वे कठोर शब्द कह दिए, परंतु दिव्या के फूट फूट कर रो पड़ने से उसका हृदय अपनी कठोरता के लिए परिताप से गल गया। संयम की मुद्रा में वक्षस्थल पर बधे उसके बाहु स्थिर हो गए। दिव्या को गूढ़ आलिंगन में लेकर उसके केशों, अश्वशक्ति नेत्रों और कपोलों को चूम कर अपनी कठोरता के लिए क्षमा मांग कर वह उसके सांत्वना देने लगा। तब दिव्या उसकी अधीरता को आश्रय देने के लिए विह्वल हो उठी। दोनों के हृदय अपने को भूलकर एक दूसरे के लिए प्रभावित हो उठे। दिव्या के दिन अवसाद और क्षोभ में व्यतीत रहे थे। अपने दुख की बात सोचते समय उसे वैध्यवर स्थिविर चिविक के शब्द याद आ जाते। सुख और दुख अन्योन्याश्रय हैं, उनका अस्तित्व केवल विचार और अनुभूति के विश्वास में है। इच्छा ही सर्वस्वता में दुख का मूल है। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। वास्तविक सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा से निवृत्ति में है। महास्थिविर के उपदेश पर उसे झुझलाहट होने लगती। वह स्वीकार न कर पाती कि पृथ्वीसेन के धर्मस्थान से न्याय प्राप्त कर बालाधिकृत का पद पा लेने से संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व उसकी कल्पना में इसके अतिरिक्त और कामना न थी। पृथ्वीसेन के कौशल और व्यस्तता का प्रसंग सुनकर वह उत्साहित होती, परंतु उसे समीप पाने के लिए दिव्या के प्राण और भी व्याकुल हो जाते। दिव्या अपनी धाता छाया की माँ को अम्मा पुकारती थी। शैशव में दिव्या की क्रीड़ा सखी और समवयस्क होने के अतिरिक्त छाया का यह ममता का अधिकार अपरिमित था। दिव्या से प्रयोजन निष्प्रयोजन निरंतर भत्सना सुनकर भी छाया के लिए उससे कठोरता की संभावना न थी। दिव्या के क्षुब्ध होने पर छाया उपेक्षित और निरादित होकर भी दिव्या के पार्श्व में बनी रहती। दिव्या के लिए भी छाया के अतिरिक्त दूसरा कोई सह न था। इस समवयस्का आत्मिया दासी से वह उसी प्रकार निसंकोच थी जैसे कोई अपने नित्य व्यवहार के वस्त्रों से होता है। छाया का प्रेमी धर्मत्स के प्रसाद का दास नायक बाहुल दासता के स्वतंत्र लाभ करने के लिए स्वेच्छा से सैनिक सेवा के लिए चला गया था। दिव्या की विरक्ति और शैथिल्य में छाया अपने छिपे दुख का आभास पाती। दोनों के दुख की अनुभूति में अंतर उतना ही था जितना उनके दुख सहने और दुख प्रकट करने की क्षमता में था। छाया दिव्या के पर्यक अथवा विस्टर के समीप उसके पांव अथवा शरीर के किसी अंग पर हाथ धरे बैठी रहती और प्रासंगिक अप्रासंगिक वार्तालाप से उसकी चिंता भंग करने का उपाय करती। दिव्या के विवाह के लिए महादेवी की निरंतर चिंता, उस संबंध में कितने ही योग्य वरों का प्रसंग और तात के सम्मुख पृथ्वीसेन के दिव्या के पाणी के लिए प्रार्थना और तात के उत्तर पर पंडित विष्णु शर्मा तथा प्राय उदासीन भृग शर्मा के कक्षों में प्रकट किए गए क्षोभ का भी समाचार दिव्या को छाया से मिलता रहता। पृथ्वीसेन के प्रति अपने परिवार के निरादर भाव से दिव्या का हृदय जल उठता। तात और संपूर्ण प्रसाद जान ले, आर्य पृथ्वीसेन के अतिरिक्त मैं किसी से विवाह न करूंगी। आर्य पृथ्वीसेन ने ही मेरे प्राणी के लिए तात के सम्मुख प्रार्थना नहीं की, मैं स्वयं यही चाहती हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहती। यह सब जान ले, मेरे लिए किसी अन्य वर की संभावना नहीं। यह जानने पर ही तात आर्य की प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे, विवाह भी विलंब से नहीं, आर्य के युद्ध पर आने से पूर्व ही करना चाहती हूँ। छाया के सम्मुख उसने सब कुछ निसंकोच कह डाला और सोचती रही कि छाया से अम्मा सुनेगी और फिर सब सुनेंगे। हाँ, सब सुन ले। पृथव्य प्रबुद्ध की पत्नी आर्यतारा ने दिव्या को स्नेह से अंक में लेकर उपदेश दिया। वत्से अधीरता उचित नहीं, तात तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम्हारी इच्छा का तिरस्कार नहीं कर सकते, परंतु इस संक्रमण काल में तुम्हारे विवाह में शीघ्रता का प्रभाव जन पर अनुकूल न होगा। इससे आर्य पृथ्वीसेन के प्रति तात का न्याय पक्षपात का अपवाद ग्रहण कर लेगा। केंद्रस के सांगल की ओर बढ़ते आने के समाचार से उठी आशंका और आतंक की लहरें नगर के प्रसादों के अंतःपुरों तक पहुंचने लगी। पत्नी और दिव्या को आश्वासन देने के लिए आर्य प्रबुद्ध शर्मा ने कहा, आशंका का कारण नहीं, सामंत ओक्रोश और पृथ्वीसेन द्वारा सुनियोजित हमारी नई सेना नक्षत्रज्ञ विक्रम द्वारा निश्चित शुभ लग्न में एकादशी के चंद्रमा का दर्शन कर समर यात्रा करेगी। निश्चय ही युद्ध की गति पलट जाएगी। बलात् धरकर भेजे गए विवश सैनिकों में और आत्मरक्षा के लिए तत्पर सैनिकों में महान अंतर होता है। दिव्या ने सुना, चौथे दिवस मध्यरात्रि के पश्चात पृथुसेन सेना लेकर समर प्रस्थान करेगा। उसके हृदय में शूल धस गया। युद्ध उसने देखा न था, परंतु उस विषय में यथेष्ट सुना था। सहस्त्रों पुरुषों का अनेक मारक शस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करना, रक्त की नदियां, सहस्त्रों हताहतों का चित्कार, उनका भूमि पर भिज जाना, ऐसे कार्य में केवल भय आपत्ति की ही संभावना है। पृथुसेन अपने वेगमान अश्व पर उसी नर मेघ में धसा चला जा रहा था। महादेवी के अनुशासन से अन्यमनस्कता और शैथिल्य दूर रखने के लिए दिव्या को अपने हाथों से अनेक गृह कार्यों में योग देना होता। हाथ निर्दिष्ट कार्य में यंत्र की भांति लगे रहते, पर मन कहीं और रहता। उस विभीषिका में दुस्साहस से सरपट दौड़ते, गिरवा फैलाए, चंचल श्वेत अश्व पर उठी भुजाओं में खड्ग थामे पृथुसेन संकट की ओर वेग से झपटता दिखाई देता रहता। दुष्कल्पनाओं से दिव्या का शरीर सिहर उठता। छाया का प्रणयी दास नायक बाहुल्य स्वेच्छा से सैन्य सेवा ग्रहण कर स्वतंत्र नागरिक बनकर पृथ्वीसेन की पदाति सेना में चला गया था। छाया विरह से दुखित थी। दिव्या उसे समीप बैठाकर बाहुल के संबंध में वार्तालाप कर सांत्वना देने के प्रयत्न में स्वयं भी सांत्वना पाती। छाया ने तांत्रिक पंडित वैकुंठ से बाहुल की रक्षा के लिए एक कवच प्राप्त किया था। दिव्या ने भी स्वर्ण की एक अंगूठी तांत्रिक को भेंट कर महाशक्ति रक्षक कवच पृथ्वीसेन के लिए प्राप्त किया। जैसे भी बन पड़ा, दिव्या तीनों दिन मल्लिका और वसुमित्रा के प्रसादों, पुष्यकर्णी की उपमनों और सृष्टि प्रसिद्ध के प्रसादों में पृथ्वीसेन की खोज में गई। पृथ्वीसेन कहीं भी न पाकर वह निराश लौट आई। आर्य धिति शर्मा से उसने सुना कि बालाधिकृत पृथ्वीसेन अत्यंत व्यस्त हैं। दिन और रात्रि उनके अश्व की पीठ पर ही बीतते हैं। एक अश्व थक जाने पर वे दूसरा बदल लेते हैं, परंतु वे स्वयं नहीं थकते। दिव्या अधीर होकर सोचने लगी, क्या व्यस्तता में मेरे लिए कुछ भी क्षण नहीं? यदि उन्हें ध्यान होता कि क्या वापा को ही न भेज पाते, मैं हूं भी इसी योग्य। उनके अत्यंत श्रांत शरीर और चिंता से क्लांत मन को मैं कब कौन आश्रय और सांत्वना दी है? उनकी आकुलता को मैंने सदा अपनी कठोरता से कुंठित किया है। उस संघर्ष में यदि वे मुझे भुला देना चाहते हैं तो मैं इसी योग्य हूँ। उसके नेत्र में आंसू छलक आते हैं। आंसू बहाने का भी अधिकार न था। वह छाया की भांति उन्मुक्त होकर रो भी न सकती थी। आंसू पूर्ण कंठ में श्वास और रोध अनुभव कर वह निश्चल रह जाती। उसकी कल्पना में प्रतिक्षण वही क्रम दिखाई देता रहता। श्रांत क्लांत विह्वल पृथ्वीसेन का उसके आलिंगन में विश्रांति और संतोष चाहना, उसकी वर्जना से कुंठित क्षुब्ध पृथ्वीसेन का दुस्साहस से युद्ध की विभीषिका में झपटते चले आना, जहां से संभव है मेरा शव ही सांगल में लौटे। पृथ्वीसेन का अवसाद से खिन्न कुंठित मुख उसकी दृष्टि के सम्मुख आ खड़ा होता। वह स्मृति दिव्या के मन और शरीर को खंड खंड कर देती। आशंका से त्रस्त दिव्या की कल्पना चरम विभीषिका की कल्पना करने लगती। उसे समर भूमि में चोटी से एड़े तक रक्त से भीगा पृथुसेन का शरीर अश्व से गिरता दिखाई देने लगता। शोकग्रस्त सैन्य समूह से घिरा एक शव दिखाई देने लगता, उसके साथ स्वयं उसकी अपनी मृत्यु भी। तात के स्थान में ज्ञान गोष्ठियों में सुने जीवन मृत्यु, शरीर आत्मा और पुनर्जन्म के प्रसंग मस्तिष्क में जाग उठते। वे दोनों पुनः जन्म लेकर अमर प्रणय में बधेंगे। बौद्ध श्रमणों के वचन स्मरण हो आते। मन की उग्र इच्छाओं और व्याकुलताओं ही मनुष्य के वे संस्कार हैं जो मृत्यु की पीड़ा में बना देते हैं। पृथुसेन की विह्वल इच्छा और व्याकुलता अत्यंत उग्र सजीवता से उसकी कल्पना में जाग उठती। वह स्वयं विह्वल हो जाती। अब मेरा शरीर आर्य का है, मेरा मन आर्य का है, मेरी आत्मा आर्य की है, मैं उन्हें व्याकुल क्यों देखूं? आर्य जो चाहेंगे उनका है सर्वस्व, परंतु समर यात्रा से पूर्व उन्हें पाऊं कहां? केवल आज की संध्या ही तो शेष है। तांत्रिक वैकुंठ से प्राप्त महाशक्ति कवच निरंतर उसके हाथ में था। वह कवच अपने हाथ से पृथ्वीसेन की भुजा पर बांधे बिना उसे समर में किस प्रकार जाने दे सकती थी? उसकी शरीर के प्रकट शैथिल्य के भीतर उसका प्रत्येक स्नायु अत्यंत तनी हुई वीणा के तारों के भांति चिंता की अंगुली के स्पर्श से निरंतर थरथरा रहा था। महाश्रेष्ठी प्रस्थ ने समर में पुत्र के मंगल और मद्र सेना की विजय कामना के उद्देश्य से प्रजापति के देवस्थान पर महायज्ञ की आयोजन की थी। पूर्ण धातु चैत्य में उन्होंने 300 श्रमणों द्वारा परित्राण दिवा सेना के लिए तथागत के बिंब के सम्मुख सूत्र पाठ कराकर 1,000 भोक्षुओं का भिक्षा से सत्कार किया और यवन देवी जीएस के मंदिर में अश्व बलि का समारोह किया। छाया की सेवा में लेकर दिव्या तीनों स्थानों पर गई, परंतु पृथ्वीसेन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सुना आर्य निरंतर शिविर में व्यस्त हैं। वह निराश लौट आई, परंतु निराशा से शांत हो जाना संभव न था। धाता से अनुनय कर उसे पुनः प्रेस्त प्रसाद में और दास गृह को पृथ्वीसेन के खोज के लिए शिविर से बाहर भेजा। दिव्या के मन की अवस्था अत्यंत विक्षिप्त थी। एक ओर उसे प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण युग के समान दीर्घ जान पड़ता था, तो दूसरी ओर पश्चिम की ओर जाने और उगते जाते सूर्य की गति से समय अत्यंत तीव्र गति से हाथ से निकलता जाता जान पड़ता था। समाचार लेकर धाता प्रस्थ प्रसाद से लौट पाई और न दास गृह सैन्य शिविर से लौटा। सूर्य की किरणें केवल वृक्षों के सिरों पर शेष रह गई थी। विलीन होती किरणें दिव्या की आशा के साथ समेट लिए जा रही थी। किरणें वृक्षों के शिखर से भी लोप हो रही थी। दिव्या सुधीर उत्तर में, परंतु सांगल से प्रसादों के कंधों पर सिर उठाए जान पड़ती पर्वत श्रेणियों के शिखर पर सूर्य की अवशिष्ट किरणों की ओर दृष्टि लगाए निराशा से लड़ रही थी। संतावना उसके मन में उतनी ही दूर थी जितनी पर्वत श्रेणियां उसके हाथ से। धाता ने लौट कर निराशा से आर्य को पाने में असफलता का समाचार कहा। उसी समय सम्मुख पर्वत श्रेणियों पर से भी सूर्य का शेष प्रकाश विलीन हो गया। दिव्या क्षण पर्यक पर क्षण पीठिका पर बैठती, क्षण कक्ष में और क्षण बाहर उद्यान में टहरती। उसे कहीं चैन न था। पल पल वह तिशा अनुभव कर छाया से जल मांगती और जल पात्र समीप रख घूंट भरना भूल जाती। सहसा दासी माला ने कक्ष में आकर समाचार दिया, प्रेस्त प्रसाद की दासी वापा यज्ञ का प्रसाद लेकर महादेवी के कक्ष में उपस्थित हुई है। दिव्या लेटी थी। सहसा उसने प्रश्न किया, क्या कब? इसी क्षण भद्रे। दासी से उत्तर पाकर अपने अशोभन व्यग्रता के लिए संकोच से दिव्या पुनः लेट गई, परंतु उसकी दृष्टि द्वार की ओर से न हटी। दासी के चले जाने पर लेटे रहते न बना, वह उठकर कक्ष में टहलने लगी। उत्सुकता दमन करना असंभव हो जाने पर उसने पुकारा, छाया देख, क्या दासी वापा लौट गई? उसी समय वृद्धा दासी ने दिव्या के कक्ष में प्रवेश किया। आयुष्मती कुमारी के लिए कल्याण कामना कर उसने देवता से आयुष्मती के दुख संताप अपने हीन वृद्ध शरीर पर देने की प्रार्थना की। समीप बैठकर वह यज्ञ के विहत अनुष्ठान का वृत्तांत सुनाने लगी। उसकी दृष्टि समीप उत्सुकता से कान लगाए छाया की ओर बार बार जाती। दिव्या ने छाया का को आदेश दिया, छाया भंडार गृह से वृद्धा बापा के लिए उपायन लाओ। छाया के चले जाने पर बापा ने रहस्य के स्वर में संदेश दिया, सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात मल्लिका प्रसाद में। दिव्या के नेत्र ज्योतिर्मय हो गए। रत्नजंडित अंगूठी उतार कर उसने बापा के हाथ में रख दी। उत्साह से उठ दिव्या उपेक्षित मलिन वस्त्र परिवर्तन कर प्रसाधन में लग गई। भावावेश के कारण निरंतर अधिक स्वेद आने से प्रसाधन कठिन हो रहा था और उसका हाथ अटपटा जाते। सहायता के लिए प्रस्तुत छाया के प्रश्नों का उत्तर भी वह न दे पाती। उद्रेक से उसका स्वर अस्वाभाविक हो रहा था। उत्साह और उल्लास आकंठ उमग आने के कारण शब्दों के लिए स्थान न था। वह आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रसाधन उस यात्रा का अनुष्ठान था। पृथ्वीसेन मध्य की रक्षार्थ विजय देवी को संतुष्ट करने के लिए आत्मसमर्पण का अर्ध लेकर समर यात्रा के लिए प्रस्तुत था। उसके संकट और भय में उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए अपने अस्तित्व उसे सौंप कर उसके हृदय में समा कर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हुई। वहीं संसार में उसका सबसे अधिक अपना था। उस पर परिवार, समाज और दिव्या का अपना अस्तित्व भी न्योछावर था। उसने छाया को रथ प्रस्तुत करने का आदेश देकर महाशक्ति का कवच हाथ में ले लिया।